सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् जं जस्सजम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वाह मरणं वा तं तस्सतम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसकदिवारे दुम् इन्दो वा तः जिनेन्दो वा एवं जोनिषयदो जानदिदौ वा निसौ अपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो कदिसो को दिट्ठि।
जिनागम के आधार से कारण कार्य का जो रहस्य है, उसका जो संबंध है, उसको हम निश्चित कर रहे हैं। यह अत्यंत आवश्यक बात है कि कार्य तो प्रत्येक द्रव्य में हर समय हो रहा है और हम भी कोई ना कोई कार्य करना चाहते हैं। ये चाहने से कार्य नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य की जो प्रत्येक समय की सुनिश्चित पर्याय है, वो अपने द्रव्य के स्वभाव में से ही वैसी प्रकट होती है अपनी योग्यता से अपने समय पर। और ये चाहना क्या है, कौन से गुण की पर्याय है, चाह क्या है, इच्छा क्या है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय करे और हमारा द्रव्य का परिणमन पलट जाए, कोई अन्य हो जाए, ये बात नहीं हो सकती। द्रव्य हम उसी को कहते हैं जो अनादि अनंत पर्याय उनका सुनिश्चित क्रम है, वो उसी द्रव्य के अंग में ही विद्यमान है, उसे कोई पलटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अनंत जीव है तो उनका पर्याय, उनका जो निश्चित क्रम है, वो प्रत्येक का अपना अपना होता है। जैसे हम देखते हैं ना, ये फिंगरप्रिंट्स क्यों लेते हैं, हर एक के अपने अपने हैं। वैसे जो पर्यायों का क्रम है प्रत्येक द्रव्य का, वो अपना अपना हर एक का अलग अलग है, उसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, ना वो द्रव्य स्वयं उसमें कोई पलटा सकता है, पर्यायों का क्रम बदल कर कोई अन्य कर दे, या कोई जिनेन्द्र भगवान उसको पलटा दे, कोई अन्य कर दे, या कोई इंद्र नरेंद्र उसको कुछ पलटा दे, ये बात हो ही नहीं सकती। हमें द्रव्य जानने में ही हमारी भूल हो रही है। द्रव्य कहना ही उसको, जो गुणों का समूह तो है ही है, प्रत्येक समय की सुनिश्चित पर्यायों का क्रम उस द्रव्य में ही विद्यमान है। और उस जो पर्याय होती है, उस पर्याय के होने में अनेक कारण आ मिलते हैं। ये जो अनेक कारण है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। अभी तक तो हमने निमित्त उपादान की भी बात देखी है, षटकारक को भी देखा है। ये षटकारक के संबंध में प्रश्न भी था ना, ये अपादान कारक कल किसने पूछा था, अपादान दूसरे में से आता है वो अपादान, हाँ आपने पूछा था। तो ये जो विभक्ति में जो बताते हैं, तो वो तो भिन्न कारकों में दूसरे किसी चीज में से आए, जैसे हमने डब्बे में से आटा निकाला, वहाँ जो अपादान कहते हैं उससे अलग किया आपका कहना था ना, वो भिन्न कारकों में लगेगा, भिन्न कारकों में घटित होगा। परंतु ये जैन धर्म की विशेषता है, जैन दर्शन की, ये अभिन्न कारक उसने दर्शाए। द्रव्य के षटकारक द्रव्य में ही है, द्रव्य स्वयं ही करता है और द्रव्य स्वयं ही कर्म है। पर्याय को द्रव्य में अभेद करके द्रव्य को ही कर्म कहा है, द्रव्य को ही साधन कहा है, द्रव्य को ही संप्रदान अपादान अधिकरण सब कुछ कहा है। यह कार्य की चर्चा हो रही है, इसलिए वो षष्ठी विभक्ति जिसको कहते हैं संबंध सूचक, उसको भी नहीं लिया है और संबोधन को भी नहीं लिया है। संबंध बताने वाली भी शक्ति है, कौन सी शक्ति है, स्वस्वामी, स्वस्वामी संबंध बताइए ना, अंतिम शक्ति 47 नंबर की, तो वो है नहीं है वो बात नहीं है, परंतु यहाँ हम चर्चा किसकी कर रहे थे, कार्य में जो कोई किसी न किसी रूप में उसके प्रयोजन जिसका पाया जाता है, जो कोई प्रयोजक है उसका, तो उसको हमने कारक कहा था। दूसरी भी एक बात आती है कि जब हमने कल बात की थी ना प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना ध्यान आदि जो है, तो हमें ऐसा लगता है कि आप ध्यान का क्यों निषेध कर रहे हैं। ध्यान का निषेध नहीं होता है, क्योंकि ध्यान में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और ध्यान में ही आगे का पूरा ही मोक्ष मार्ग होता है, और ध्यान के द्वारा ही वो सारे निर्जरा आदि के कार्य भी होते हैं। परंतु यहाँ जो अन्य अन्य मतियों के जो अन्य अन्य कल्पनाएं ध्यान संबंधी, उसका निषेध है। सच्चा ध्यान तो होता ही है। द्रव्य संग्रह में क्या लिखा है ध्यान संबंधी मालूम है? ये निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होता है। कौन सी गाथा है? दुविहंपि मोक्षमग्गम झाणे पावुनदी मुनि नियमा, है ना कि नहीं? सुनी सुनिए, ध्यान में ही प्राप्त होती है ना। 40-47 कुछ होनी चाहिए। कितने नंबर की है? क्योंकि ये ध्यान अवस्था में ही प्राप्त होती है। देखो देखो 47। द्विहंपि मोक्ष हेउम झाणे पावु नदी जम मुनि नियमा तम्मा पयत्त चित्ता जूयम झाणम समभसह। ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले में पहले सम्यक, अभी हम व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन की बात करेंगे। किस समय प्राप्त होता है? पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, फिर निश्चय होता है कि नहीं होता? क्या कहते हैं, एक साथ होते हैं कि फिर बाद में? पहले निश्चय बाद में व्यवहार, पहले व्यवहार बाद में निश्चय, एक साथ है, एक साथ है, परंतु एक के कारण दूसरा नहीं होता है। अभी बात आई थी ना गुरुदेव के प्रवचन में, निश्चय कारण और व्यवहार उसका कार्य ऐसा है ही नहीं, और व्यवहार है वहाँ वो करता होकर निश्चय को करे ऐसा भी नहीं है, बस वहाँ पाया जाता है। यहाँ क्या लिखा है? ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। यह मुनि की बात है। सम्यक दर्शन भी जो प्राप्त होता है निश्चय और व्यवहार, वो ध्यान से ही प्राप्त होते। अतः तुम चित्त को एकाग्र करके ध्यान का कैसा अभ्यास करो? सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करो नहीं कहा, कैसा अभ्यास करो? सम्यक प्रकार। ये हमने जो अन्य अन्य ध्यानों के नाम यहाँ ली थी, तो उसमें तो कोई ना कोई मिथ्या भ्रमणा जीव की चल रही है और उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है। यहाँ तत्व विचार के बिना, तत्व निर्णय के बिना जो कोई केवल मन एकाग्र करना, वो तो हम कर ही रहे ना। आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान में मन एकाग्र नहीं हो रहा। पीड़ा चिंतन, अरे मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, दिन भर रात दिन रात दिन रात वो रोग की बात करता रहे, तो क्या वहां ध्यान नहीं हो रहा? आर्त ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो केवल एकाग्र नहीं करना, तो किसमें एकाग्र करना, विषय वस्तु क्या है? आज जो प्रवचन में आया है भेद ज्ञान कैसे करना, ये जो साधन की चर्चा होती है, भेद ज्ञान की बात आई थी ना, ज्ञान में और राग में कैसे, राग को जानना ही नहीं ऐसा नहीं कहा? राग को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय अपने से हुई है। ये कौन से राग की बात है? जब हम आत्मा संबंधी विकल्प चलेंगे, वो विकल्प भी राग है, और उस राग में जब तक अहम बुद्धि है, ये मेरा कार्य है, इस करने से मुझे आत्मज्ञान होगा, यदि ऐसी मान्यता होगी, विकल्प आएंगे उसकी ना नहीं है, परंतु वो विकल्प से उस राग से आत्मज्ञान होता है ऐसा कोई मानेंगे तो ये उसकी भूल है। कुछ पर्याय में है, परंतु उसको हम वो राग रूप अनुभव में आ रहे कि ज्ञान रूप अनुभव में आ रहे? हमें जो दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है, वो हमें अग्नि रूप भासित होती है कि दर्पण रूप भासित हो रही है, ये निश्चित करना है। हमारे ज्ञान में जो कोई वस्तुएं झलक रही है वो ज्ञानमय है, हमारे ज्ञान में ये झलक रहा है, तो ये हमें प्लास्टिक रूप झलक रहा है कि ज्ञान रूप झलक रहा है, हमें क्या भासित हो रहा है। तो यदि हमें वो ज्ञान, क्योंकि वो तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान के साथ अभेद है, परंतु हमने उसको क्या माना है, परवस्तु को ही हम, परवस्तु के साथ हम संबंध लगाते हैं। अभी जो बात आई थी, ज्ञान भी है और राग भी है, और दोनों को मिलाकर हमने एक में एक मान लिया है, ये हमारी भूल है। तो जो साधन की चर्चा हो रही है, किस पद्धति से विचार चलेंगे, किस पद्धति से निर्णय होगा, तो आप तो बहुत भाग्यवान हैं कि यहाँ गुरुदेव के प्रवचन सुनकर उसके बिंदु भी आप निकालते हो और उस पर विचार भी करते हो। इसी सही विचार पद्धति से ही आत्मज्ञान होने वाला है, यही साधन है। तो यहाँ कोई समझता होगा कि ध्यान का ही निषेध है, तो ऐसी बातें नहीं है, सम्यक प्रकार से होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, हमारा विषय चलेगा पांच समवाय। पंडित टोडरमल जी भी बताते हैं कि जब जब कार्य होता है तो अनेक कारण आ मिलते हैं। क्या कहा? जब हम कोई कार्य करते हैं तो सभी उसके साधन जुटाने में बहुत तकलीफ होती है हमें। क्या करते हम? कोई मेहमान आने वाले हैं तो पहले क्या करना उस संबंधी चिंता करते हैं, फिर उसके एक एक कोई ना कोई चीज़ें इकट्ठी करनी है, फिर उसकी बनानी है, तो देखो हम कितनी कितनी बातें करते हैं एक कार्य करने के लिए। घर में कोई शादी ब्याह संबंधी कोई ऐसा कार्य है तो कितने कितने कार्य हम करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जब जब कार्य होता है तब तब अनेक कार्य, क्या कहा, स्वयमेव आ मिलते हैं, और हम तो कारणों को जुटाने के पीछे पागल की भांति वहां मेहनत करते हैं, और इतनी सब मेहनत करने के बाद कोई कहता है ये तुम्हारा कार्य ही नहीं, इसको कौन करे, तो कितना गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हमने माना है वे कार्य हम कर रहे हैं और हमने किया तो हुआ है, और ये हमारे अहम बुद्धि पर चोट लगती है। जब आचार्य कहते हैं कि ये तेरा कार्य ही नहीं है, तो ज्ञान के अलावा तूने कुछ किया ही नहीं है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अरे इतनी मेहनत कर कर के हमने ये सारा इकट्ठा किया, ये सारा किया, ऐसा हम मान रहे थे, और आचार्य कहते तेरा कार्य ही नहीं है। अभी हम देखेंगे ये कौन कौन से कार्य, कौन कौन से कार्यों के समूह, कारणों के समूह है जो स्वयमेव आ मिलते हैं। स्वयमेव आ मिलते हैं, उसका अर्थ क्या है? कोई उनको इकट्ठा कर नहीं सकता, क्योंकि कार्य निश्चित है तो उसके कारण भी निश्चित होने ही चाहिए। द्रव्य की प्रत्येक समय की पर्याय उसके स्वयं के उपादान से अपने निश्चित समय पर होती है, तो जिन अनेक कारणों की हम चर्चा करने वाले हैं वो कारण भी स्वयमेव उसी समय उपस्थित रहते ही है, उसको कोई वहां से हटा नहीं सकता। अब देखेंगे, अभी 108 पृष्ठ पर ये पांच समवाय वाला भी प्रकरण चलेगा अपने को। देखो दूसरा पैराग्राफ, बाह्य पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनके संयोग वियोग में हम सुख दुख मानते हैं। क्या कहते हैं हम? बाह्य पदार्थ जो है, पहले हमारी भूल क्या हुई, ये मुझे बताओ, ये छह द्रव्यों के नाम तो सबको मालूम है, उसमें अनुकूल यानी इष्ट द्रव्य कौन कौन से और अनिष्ट कौन कौन से हैं? हाँ बोलो बोलो अनुरा, इष्ट द्रव्य कौन से हमें छह द्रव्य मालूम है ना, आप ही को बुला रहे हो, कोई भी नहीं है। अरे हम तो दिन रात इष्टता अनिष्टता चलती है ना हमारी, कोई जीव तो इष्ट अनिष्ट होगा, हमारी माँ तो हमारे भले की इच्छा करती है तो वो तो इष्ट होगी ना हमारे लिए, भगवान वो तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, और अन्यमति के भगवान वो तो अपने शिष्यों का भला करते हैं, तो वो तो इष्ट होगे ना उनके लिए। तो इस विश्व में कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को ना इष्ट है ना अनिष्ट है, तो हम क्या करें, इष्ट अनिष्ट मानकर, किसने माना, ये शरीर इष्ट है कि अनिष्ट है? तो गोरा शरीर इष्ट है कि काला शरीर इष्ट है? तो ना इष्ट है ना अनिष्ट है, हमने माना उसको, तो इष्ट अनिष्ट मानकर ये मिथ्या भ्रमणा चल रही है। उनके संयोग और वियोग में जो इष्ट लगता है उसके संयोग में हमने सुख माना, जो अनिष्ट लगता है ओ अनिष्ट हमने माना उसको, तो अनिष्ट मान लिया और ऐसे किसी संयोग को हमने अनिष्ट माना तो हम अपने को दुखी समझते मानते हैं और उतने मात्र को अपना सर्वस्व मान लेते हैं। यही मैं हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसा मानते रहते हैं। संयोग जितना ही अपने को माना है और संयोगों के कारण ही मैं सुखी हूँ और दुखी हूँ इस जीव ने मान लिया है, तो उसके सारे प्रयत्न कैसे रहेंगे? संयोगों को जिसने उसने सुख स्वरूप मान लिया है तो उसको अनुकूल बनाने के पीछे इसकी पागल की भांति दौड़ चलती है। इन सब संयोगों से भिन्न, इन सब को जानने वाला मैं कोई भिन्न तत्व हूँ? संयोग है उसकी ना नहीं है, परंतु मैं कैसा हूँ? इन सभी संयोगों से भिन्न हूँ, वो संयोग है ये किसने जाना? वो जानने वाला मैं हूँ। वो इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं होते हैं, मैं भिन्न तत्व हूँ, अनुपम आश्चर्यकारी एवं अनुभव में आने वाली वस्तु। कैसी है? शास्त्र में लिखा है अनुभव होता है, वो थोड़ी है, तो कैसी चीज है ये? अनंत जीवों ने इसका अनुभव करके वो सिद्ध दशा प्राप्त की है, तो मैं भी कैसा हूँ? अनुभव में आने वाला पदार्थ हूँ, स्वयं अपने को अनुभव कर सकूं ऐसा मैं द्रव्य हूँ स्वयं, कि जिसके अनुभव में अतीन्द्रिय सच्चा सुख प्राप्त होता है। अभी तक क्या माना था? ये अनुकूल संयोग हो गए तो मैं सुखी माना था और संयोगों को अनुकूल करने के पीछे दौड़ रहा था। अब क्या समझ में आया? इन संयोगों को जानने वाला मैं हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, कोई अनुपम आश्चर्यकारी चीज हूँ मैं, और मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ। तो जिसके अनुभव में अतीन्द्रिय सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, इस बात का पता भी अनेक लोगों को नहीं होता। इस स्वाधीन सुख की, कैसा है सुख? स्वाधीन क्यों कहा इसको? मैं ही स्वयं कर्ता होकर इस सुख रूप पर्याय रूप से परिणमित होने वाला हूँ, तो ये स्वाधीन जो सुख है, क्योंकि अपने स्वभाव में पड़ा है, इस स्वाधीन सुख की सहज उपलब्धि, उसको उपलब्ध करने का भी कोई जटिल मार्ग नहीं है, कठिन नहीं है, वो सहज है। स्वभाव भी सहज है और स्वभाव पर्याय भी सहज होती है, तो सहज उपलब्धि को छोड़कर यह जीव अनादि काल से परद्रव्यों के परिणमन में कुछ हेर फेर, परद्रव्य का परिणमन इसके करने से होता है कि नहीं होता है? होता तो नहीं है, मानता है मैं कर सकता हूँ और हेर फेर करने की बुद्धि भी रखता है, मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता भी है, तो हेर फेर बदलाव करने के पीछे लगकर क्या होता है? अपना जीवन बर्बाद करता है, क्योंकि पर का परिणमन तो वही होता है जो होने योग्य है, क्योंकि जो परद्रव्य है, जो पुद्गल है, जो अन्य जीव है, उनका भी अनादि अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है। उस पर्यायों के क्रम में कोई अदल बदल फेरफार कुछ नहीं कर सकता है। इसने माना कि मैं इसको कर सकता हूँ और उसके करने के पीछे उसी भ्रमणा में वो प्रयत्नशील रहता है। होता तो वही है जो होने योग्य है, यदि इसके कल्पना के अनुसार हो जाता है तो मानते देखो मैंने किया कि नहीं, देखो मैंने किया था, मैं कुछ भी लात मारूंगा और पानी निकालूंगा। मराठी वाले है ना, यहाँ मराठी में कहते लात मारीन तिथे पानी काढ़ेन, यानी क्या? मैं चाहूं वो कर सकता हूँ, ये इसकी मिथ्या बुद्धि है। एक कभी कभी होता है ना बाय चांस, क्या होता है? जैसे इसने इच्छा की वैसे परद्रव्य का परिणाम उसके स्वभाव के अनुसार हुआ तो मानता है मैंने इसको कर दिखाया, मैं चाहूं वो कर दिखा सकता हूं, तो ये अपना जीवन बर्बाद करते आया है। परद्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता, इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। बुद्धि यानी मान्यता, कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ क्या है? मैं परका कर सकता हूँ ऐसी जो मिथ्या मान्यता है उसको कहेंगे कर्तृत्व बुद्धि। अहम बुद्धि का अर्थ क्या होता है? पर पदार्थ रूप मैं हूँ, शरीर रूप मैं हूँ, इसमें अहम पने की यानी मैं पने की जो मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, उसको कहेंगे ये परमे अहम बुद्धि, पर की कर्तृत्व बुद्धि, ये ममत्व बुद्धि। बुद्धि क्या शब्द दर्शाता है? वो खोटी मान्यता, उसको यहाँ बुद्धि कहा है। अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, किसमें? पर पदार्थ में, ये उसकी मिथ्या मान्यता चल रही है। तो पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ क्या कहा हमने? पर का कार्य मैं कर सकता हूं ऐसी मिथ्या मान्यता, इस मिथ्या मान्यता के कारण जीव दुखी है और उन्हीं प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है। इसलिए प्रश्न उठता है, ये सिद्ध भगवान क्या करते होंगे? वो बोर नहीं होते? हम क्यों नहीं बोर होते? क्योंकि हम किसी ना किसी पर का कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, ऐसा माना है। करते नहीं है, करते रहने की खोटी बुद्धि भी करते हैं और उसी के पीछे प्रयत्नशील भी रहते हैं, तो हम उसमें बोर नहीं होते हैं, मजा आता है हमें। इसलिए ऐसा लगता है ये सिद्ध भगवान क्या करते होंगे, ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना कोई अन्य का कुछ उथल पुथल करनी है, हमें तो देखो कितनी मजा आती है यहाँ। तो ये उसकी मिथ्या भ्रामना चल रही है सिद्धों के भी बारे में और अपने के भी बारे में। यह अन्य किसी की नहीं परंतु अपनी ही दयनीय अवस्था है या नहीं, यानी क्या हम इस अवस्था में है कि नहीं है, क्या हमारी ऐसी मान्यता है कि नहीं है, अपने को देखना है, किसी को बताने की बात नहीं है। इस बात पर तुम ही विचार करो। कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं। क्या कहा? क्या कहा अभी बोलो? मैं आप ही को पूछ रही हूं, ध्यान नहीं था। हाँ, तो कोई सहज कारण उपलब्ध हुआ कि ध्यान वहां बढ़ गया आपका? क्यों, क्या कहते बोलो? हाँ, जब जब कोई कार्य होता है, जब जब होता है ना, हर समय होता है, तो हर समय के कार्य में, हर समय के पर्याय में अनेक कारण एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं। कारणों के एक समूह को समवाय कहते हैं। समवाय का अर्थ क्या है? समूह। यहाँ तो हम कारणों की बात कर रहे हैं, तो अनेक कारणों का जो समूह है उसको यहाँ समवाय कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में पांच कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है, इन्हें पांच समवाय कहा जाता है। देखो, हम पांच समवाय कहते हैं तो पांच का समवाय, फिर भी उसको पांच समवाय कहते हैं। और पांच समवाय कौन से है? तो हम पांच गिनते हैं, परंतु उसमें समझना क्या है, ये पांच पांच समूह नहीं है, पांच का समूह है, पांच कारणों का समूह, पांच कारणों का इकट्ठा होना, पांच कारणों का इकट्ठा आ मिलना। कब? जब कार्य होता है उसी समय में। देखो, जिस समय कार्य होता है उसी समय कारण विद्यमान रहता है। दो तीन बातें हम अभी देख लेते, फिर बाद में याद फिर करेंगे। क्या कहा? पहले से कारण इकट्ठे किए अभी हम कार्य को शुरुआत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस समय में कार्य होता है उसी समय में कारण विद्यमान है, यानी कारण और कार्य एक ही समय में विद्यमान होता है। बात ख्याल में आई? जहां कार्य होता है वहीं पर कारण विद्यमान है। ऐसा क्यों कहा, कोई कहेगा? जहां कार्य है वहीं पर कारण है, क्यों? हाँ, एक कोई बताओ, बताओ। वो तो समय की बात हुई, हम क्षेत्र की बात करें। जहां पर कार्य हो रहा है वहीं पर उसका कारण विद्यमान है। हाँ, किसमें होता है? हाँ, वही तो हम पूछ रहे, क्यों ऐसा कहते हैं, हमें कारण चाहिए उसका, बोलो। हाँ, हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर घटित किया था, याद है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये हो गए ना आपके, वहां भी हुआ है यहां भी हुआ है, बोलो। किसमें और किसमें? कारण और कार्य में अविना भाव नहीं कहा है, परंतु वहां हमने क्या देखा था, जो कारण यानी क्या द्रव्य या गुण को हम कारण कहेंगे, अभी त्रिकाली की बात चल रही है, और कार्य किसको कहेंगे? पर्याय को। जो द्रव्य का क्षेत्र है वही पर्याय का क्षेत्र है, को कुछ अलग है? तो कारण कौन है? जैसे त्रिकाली उपादान की हम बात करेंगे तो त्रिकाली उपादान द्रव्य है, तो उसका कार्य यानी पर्याय तो उसी क्षेत्र में होती है कि द्रव्य के बाहर होती है? यानी जीव द्रव्य है, उसके चारित्र गुण की पर्याय कहां होगी? शरीर में होगी कि नहीं होगी? चारित्र कहां होता है? क्या 28 मूल गुणों में के शरीर की अवस्था में? आत्मा का चारित्र गुण है तो उसकी चारित्र गुण की पर्याय कहां होगी? ये आत्मा के संपूर्ण भागों में होगी। तो चारित्र दशा कहां होगी? आत्मा में होगी। और हम उसको कहां ढूंढते हैं? बाहर में ढूंढते हैं। तो जहां कारण है वहीं पर कार्य होता है, जहां द्रव्य है वहीं पर उसकी पर्याय होती है। हमने पहले पूछा था केवल ज्ञान कितना बड़ा है। हाँ बोलो, केवल ज्ञान कितना बड़ा है? हाँ, असंख्यात, असंख्यात आत्म प्रदेशों के बने, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है, जितना बड़ा आत्मा का क्षेत्र उतना बड़ा ज्ञान का क्षेत्र, और उतना ही बड़ा पर्याय का यानी केवल ज्ञान का क्षेत्र। तो मति ज्ञान बड़ा के केवल ज्ञान? बोलो, मति ज्ञान बड़ा है के केवल ज्ञान? हाँ बराबर है। क्यों? वही उसी असंख्यात प्रदेशों में मति ज्ञान भी होता है, और उसका व्यय होकर, मति शुद्ध ज्ञान का व्यय होकर उन्हीं प्रदेशों में केवल ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान लोकालोक बराबर और मति ज्ञान ये हमारे, हम इसको जान ले तो इसके बराबर, ज्ञेय के बराबर नहीं है। हम तो उसका क्षेत्र पूछ रहे हैं, कितना जान रहे उसको नहीं पूछा। ख्याल में आती बात? तो हमने क्या देखा, जिस समय कार्य होता है उसी समय कार्य कारण भी विद्यमान है, जहां जिस क्षेत्र में कार्य होता है उसी क्षेत्र में कारण विद्यमान है। तो हमें कहां ढूंढना अभी उसको? और उसको तो लाने से ला हो नहीं सकता, ला नहीं सकता कोई। तो कितनी स्वतंत्रता है कारण की भी और कार्य की भी। अब हम पढ़ेंगे आगे, देखो ये जो जब कार्य होता है किसी भी कार्य की उत्पत्ति में, हम 108 पृष्ठ पढ़ रहे हैं नीचे से चौथी लाइन, पांच कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है, इन्हें पांच समवाय कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार है, स्वभाव, निमित्त, नियति यानी काल लब्धि, पुरुषार्थ और भवितव्य। ये पांच के नाम कौन कहेगा? हाँ बोलोगे, हाँ यहाँ कौन कहेगा? बोलो, हाँ बोलो, हाँ 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 बहुत अच्छा। हम दूसरे भी ऑर्डर से कह सकते हैं, पांचों एक साथ ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, फिर काल लब्धि, होनहार और निमित्त, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो आगे तो चलकर चर्चा होगी इसका, हर एक का हम अर्थ भी देखेंगे, पर ये जो हमने देखा ना स्वभाव, मैं अभी दूसरे ऑर्डर से बता रही हूँ, स्वभाव क्रम में बदल रही हो, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार, ये चार को आप क्या नाम देंगे और निमित्त को क्या? हाँ ये चार किस में आते हैं? उपादान में, और निमित्त को अलग निकाला। इनमें स्व और पर करना है तो क्या कहेंगे? स्व पर का भेद करना है तो ये चार आएंगे अपने में स्व में, और निमित्त को डालेंगे पर में। ख्याल में आती बात? अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे, ये क्या है उसका, हर एक का स्वरूप क्या है, उसकी बात हम देखेंगे। यहाँ पर देखो हमने पांच नाम अभी देखे हैं, ये कारण स्वयमेव आ मिलते हैं, सहज होते हैं, कार्य सुनिश्चित ही होता है जो द्रव्य में ही पड़ा है, द्रव्य का ही योग्यता रूप धर्म वहां है, तो ये सभी कारण स्वयमेव ही वहां उपस्थित रहते ही हैं। इन सभी कारणों के समवाय से, समवाय का अर्थ क्या देखा था अभी? समवाय का अर्थ क्या है बेटा? समूह, इकट्ठा होना, किसका समूह वो नहीं पूछ रही, मैं समवाय शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ। समवाय होना यानी क्या होना? हाँ, समूह इकट्ठा होना, जुड़ जाना। जैसे अन्यमति की क्या मान्यता है? आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, उसका समवाय होता है और जीव जानने लगता है। सुना है कि नहीं सुना? तो वहां पूछते, ये खंभा है ना यहाँ पर, तो ज्ञान उसके साथ भी जाकर जुड़ेगा, तो उसको भी ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने वो समवाय से होता है ऐसा माना। आपको होगा ना अन्य अन्य दर्शनों की क्या मान्यता है, उसका निराकरण कैसे करना सीखते हो गए आप। तो यहां तो जो हम समवाय कह रहे हैं वो कारणों के समूह को यहां समवाय कहा जा रहा है। तो सभी कारणों के समवाय से यानी इकट्ठा होने से, एकत्रित आने से कार्य होता है ऐसा मानना अनेकांत है, सम्यक्त्व है। परंतु किसी एक ही कारण से यानी सर्वथा की बात है, एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है मानना एकांत है, जिसको हम मिथ्या मान्यता कहेंगे, मिथ्यात्व है। क्या कहा? मात्र नियते से ही होता है, अन्य कारणों की अपेक्षा ही नहीं, कोई नहीं, बस अन्य कारण होते ही नहीं। जो कुछ नियत है, नियति से जो होना है वो होता है, दैव से होना है वही होता है। ऐसे मानने वाले उनको क्या कहेंगे? ये नियतवादी वाले। वादी शब्द लगाया, वो एकांतवाद को सूचित करने वाला शब्द है। अन्य कारणों को नहीं मानकर कार्य सर्वथा इसमें किसी एक ही से होता है ऐसे जो मानते हैं उनको कहेंगे वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। जैसे दैव से ही सब कुछ होता है, नियति से ही सब कुछ होता है, अरे काल आएगा तभी सब कुछ होता है, परंतु काल आने पर अन्य समवाय भी वहां है इस बात को वो नहीं मानते। कथन एक समवाय की अपेक्षा से हो सकता है परंतु वहां अन्य कारणों को गौण रूप से स्वीकार है, तब तो वो उसको हम उस कथन को सम्यक कथन कहेंगे। परंतु यदि अन्य समवायों को जो अन्य कारणों को उसका निषेध करके, सर्वथा निषेध करके एक ही किसी कारण से कार्य होता है ऐसा अगर हम कहते हैं मानते हैं तो ये क्या होगा? एकांत मिथ्या तो हो जाएगा, एकांतवाद हो जाएगा। अब स्वभाव की चर्चा करते हैं। वैसे ये सारी ही बातें हमने त्रिकाली उपादान आदि के रूप में देखे ही है, यहां उन्हीं कारणों को हम समवाय के रूप में देख रहे हैं। स्वभाव शब्द से अब तुम परिचित हो ही, हमने स्वभाव के बारे में क्या क्या समझा था अभी तक? कौन कहेगा पीछे कोई? हाँ, स्वभाव की हमें कोई बातें सुनाओ, स्वभाव की महिमा कुछ आती है क्या आपको? हाँ बोलो बोलो, आप ही को पूछ रही हूँ मैं, ब्लू शर्ट। हाँ वही, आप ही नहीं पता? देखो हमें कार्य तो करना है और स्वभाव कौन है, कैसा होता है वो पता नहीं है तो कैसा चले? हाँ बोलो। स्वभाव कैसा है, वो स्वभाव का कारण कौन है? स्वभाव में ही पांच समवाय लगते कि नहीं? मेरा प्रश्न क्या है फिर सुन लो, स्वभाव में पांच समवाय लगते कि नहीं लगते? पीछे अभी जिसको पूछा था ना उसके पीछे, हाँ आपके पीछे वाले भाई को बताना, स्वभाव में पांच समवाय लगते कि नहीं लगते? क्या कह रहे उन्होंने, क्या बताए? लगते हैं। इनसे कौन सहमत है, हाथ उठा। कोई आपके मित्र नहीं यहां पर? स्वभाव में पांच समवाय लगते कि नहीं लगते बोलो? क्यों नहीं लगते? स्वभाव तो अनादि अनंत है, ये समवाय कारणों के समवाय किसमें लगते हैं? कार्य में लगते हैं। स्वभाव को कोई कारण नहीं होता, स्वभाव अनादि से ही है, अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक कायम रहने वाला है, उसी को हम स्वभाव कहते हैं। स्वभाव जिसका जो भाव है वो कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। स्वभाव कार्य नहीं है तो स्वभाव का कोई कारण भी नहीं होता, वो अनादि से विद्यमान है, कोई नया शुरुआत नहीं हुई है। कार्य है वो नया नया होता है हर समय, जो हम देखते हैं उत्पाद व्यय जो चल रहा है उसमें कारण लगते हैं, स्वभाव में कोई कारण नहीं लगते। इसलिए उसको क्या कहा? स्वयं सिद्ध कहा, स्वयंभू नहीं कहा। कल जब हम कारकों की बात आई थी तो वहां द्रव्य को जो स्वयंभू कहा था वो पर्याय की अपेक्षा कहा ना, कि द्रव्य किसी विशिष्ट पर्याय रूप से उत्पन्न होता है अपने अपने षटकारकों से। कुछ बात समझ में आती है? क्यों बेटा, जिसको अभी मैंने प्रश्न पूछा था, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर पूछना, ये क्लास चल रही है। स्वभाव में कितने कारण लगते हैं, हाँ उनको बोलने दो ना। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि स्वभाव किसी का कार्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु में यानी प्रत्येक द्रव्य में उसका अपना अपना स्वभाव, अपना अपना द्रव्य, अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना काल और अपना अपना भाव कब से है? अनादि से है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से विद्यमान है। द्रव्य का काल भी अगर देखते तो कहाँ से कहाँ तक फैला है द्रव्य? अनादि से अनंत काल तक फैला हुआ है। उसको द्रव्य की फोर्थ डायमेंशन कहते हैं। काल है उसका जो अनादि से अनंत काल तक, केवल वर्तमान में ही नहीं, वो पूरा फैला हुआ है और भगवान उसको उसी रूप में जान रहे हैं द्रव्य को। तो उसके जो अनादि से अनंत काल तक जो द्रव्य है उसकी अपनी अपनी यथा योग्य पर्याय उसके उस समय पर उत्पन्न होने वाली है, और उस उत्पन्न होने वाली पर्याय में जो कारण होते हैं वो स्वयं वो इकट्ठे आ मिलते हैं। तो उसमें से जो हम कारण की चर्चा कर रहे हैं, स्वभाव कारण है कि नहीं है बोलो। हमने अभी ये निश्चित किया कि स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं होते, तो स्वभाव स्वयं कारण है कि नहीं है? अरे हम पांच समवाय में स्वभाव का ही तो पहला नाम ले रहे हैं ना। कारण की चर्चा में अनेक कारण आ मिलते हैं, उसमें सबसे पहला नाम किसका लिया है? स्वभाव। तो स्वभाव कारण है, परंतु स्वभाव किसी का कार्य नहीं है। ख्याल में आती बात? स्वभाव के लिए अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो होता है, बस वो है और है। तो अभी हमने स्वभाव में पांच बातें देखी है। स्वभाव है वो कैसा है? स्वतः सिद्ध है। पंचाध्यायी पढ़ी है किसी ने? आज मुझे कोई सुनाए आठ नंबर के, उसके जो पहला आठ नंबर की जो गाथा है पंचाध्यायी के, स्वभाव संबंधी है। वहां द्रव्य को तत्व कहा है, तत्वम संलक्षणिकम ऐसा वहां कहा है। तो कोई हम, मैं शाम को पूछूंगी, आप बताना होगा। उसमें स्वभाव का वर्णन है। देखो स्वभाव शब्द से तो अब तुम परिचित हो ही। वस्तु का यानी द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वह स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। जैसे हमने त्रिकाली उपादान में देखा था, त्रिकाली उपादान जो है वो तो त्रिकाली स्वभाव है ही है, पर्यायगत तत्समय की योग्यता रूप भी स्वभाव उसी द्रव्य में पड़ा है। कोई भी कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। क्या कहा? आपके पास पुस्तक है? हाँ पुस्तक में देख रहे हो? नहीं, आप यहां आना सामने, क्योंकि क्या है, देखो जितना आगे बैठोगे उसका उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा। हम जब पढ़ा करते थे ना, तो सामने वाली पहले बेंच के पहला सीट हमारा कभी नहीं छूटता था। यहाँ पूरी चलती थी अपने शिविर, तब भी स्वामी जी को भी हम सुनने जाते थे तो हमारी पहली सीट निश्चित होती थी। आधे आधे पौने पौने घंटे पहले जाके जगह पकड़नी पड़ती थी, क्योंकि हजारों लोग आते थे वहाँ पर, दस दस हजार लोग आएंगे, वहाँ पहली जगह कैसे मिलेगी? क्योंकि हमें जो सीखना है तो हमारा, नहीं तो इधर उधर आजू बाजू को कोई बोलने वाला तो मिलता ही है, और फिर हम उस पर हंसी मजाक चलती है। तो इसमें अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। यदि कोई विषय वस्तु ग्रहण करनी है और ये जिनवाने की बात, मोक्ष प्राप्त करने की बात, अत्यंत जिसको कहते हैं अनमोल ऐसी जो वस्तु है, और वो आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हम आपको सुना के समझा सकते, ऐसी बात नहीं है, परंतु आप यहाँ आए हो, कुछ आपको अमूल्य ऐसा जो कोई मार्ग यहाँ सुनने को मिल रहा है, उस पर तत्व विचार निर्णय करने का जो मौका आपको मिल रहा है, बाद में तो सारी वो संसार के चपेट में, गृहस्थी के चपेट में आ जाओगे, तो इतना अवसर कभी नहीं मिलने वाला। अभी जितना कर सकते उतना पुरुषार्थ कर लो, तो ये सामने आके सुनने से तो हमें वो हमारा कंसंट्रेशन होता है, जो कोई सुनाना चाहते हैं वो बात अपने समझ में आती है। आप ऐसे कोई टीका टिप्पणी करें ये आपस में हंसीबाजी करने से आपका ही नुकसान है, हमारा क्या होने वाला है, हमारा कोई नुकसान नहीं इसमें। दलित राम जी कहते हैं जो चाहो अपना कल्याण, तो जिसको अपने कल्याण करने की इच्छा है उसको तो, क्योंकि ये बहुत सीरियसली लेने की बात है, हंसी मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर लौकिक में जो हम बातें सीखते हैं, लौकिक में जो हमारी भाषा है, हमने इसका किया उसे, वो तो वहां तो निमित्त की भाषा चलेगी। ये जो सारे सिद्धांत है वो श्रद्धा में लेने हैं, उससे हमारे रोज की जिंदगी कोई बदलने वाली नहीं है, रोज की हमारी भाषा कोई परिवर्तन होने वाली नहीं है, उसके पीछे का अभिप्राय उसमें बहुत आमूलाग्र बदल होने वाला है यदि इसको ग्रहण करते हैं तो। देखो अभी हम स्वभाव की बात देख रहे हैं, क्या कहा, कोई भी कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। यानी कोई भी कार्य कैसा होता है, अपने द्रव्य जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा। जीव द्रव्य में काला पीला लाल सफेद ऐसा कार्य होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, वो अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। हाँ, जीव द्रव्य की पर्याय में विज्ञान दर्शन चारित्र आदि को जो जानना मानना जो कुछ है वो पर्याय होगी, वो कार्य होगा, तो अपने स्वभाव का उल्लंघन कभी नहीं करता। कार्य जो है अपने द्रव्य का स्वभाव का उल्लंघन करके अन्य हो जाए ऐसी बात तीन काल में नहीं हो सकती। तो शरीर और जीव इकट्ठे अब यहाँ 60-65 साल से है तो थोड़ा एक दूसरे का काम करते होगे कि नहीं होगे? आप दो रूम पार्टनर है तो एक दूसरे को कितनी मदद करते हो? मराठी में कहावत है क्या, ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा वाण नाही पण गुण लागला, बरोबर? तो समजाओ इसका अर्थ, समजते हो भाई इसका अर्थ? दो बैल है तो ढवळ्याने सफेद कलर वाला और पवळ्याने ब्राउनिश जो कोई कलर है, तो दो एक साथ बांधे है तो एक का वर्ण तो दूसरे को नहीं लगता पर एक का गुण दूसरे को लगता है। कैसे? जैसे हम एक ही रूम पार्टनर है तो कैसे होता है, मान लेते काला है गोरा है तो काला तो गोरा नहीं हो जाएगा पर कोई आलसू है तो दूसरा भी हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वो दो बैलों के लिए कहते हैं वाण नहीं पर गुण लगला, यानी उसका वर्ण तो एक का दूसरे को नहीं लगा पर जो जैसा एक की बिहेवियर है जैसा आचरण है वैसा दूसरे करने लगता है, क्यों? समझते हैं ना। यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रही थी कि शरीर और जीव 50-50, 60-60 साल से इकट्ठे है तो थोड़ा शरीर जानने का कार्य करेगा कि नहीं, ये हमारे ब्रेन है मज्जा तंतु है सब नर्व्स है, जानने का कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, कौन करेगा? शरीर। हमने तो वही तो पूछा था कि जीव और शरीर 60-60 साल से इकट्ठा है तो ये जो भेजा ब्रेन जो है वो थोड़ा जानने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा? तो कहते वो अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता है। पुद्गल जो है जड़ है अचेतन है, अपना स्वभाव का उल्लंघन करके चेतन का कार्य थोड़ा सा कर जाए, क्योंकि आजू बाजू में रहते हैं ना, जहाँ जीव है वहीं पर शरीर है, एक ही प्रदेश में रहते हैं दोनों, कौन से एक आकाश के प्रदेश में रहते हैं, उनके अपने अपने प्रदेश भिन्न है, अपनी अपनी सत्ता भिन्न है, अपना अपना स्वचतुष्टय भिन्न है। पुद्गल जीव का कार्य करने लग जाए थोड़ा जानने लग जाए और जीव में भी थोड़ा स्पर्श रस गंध वर्ण आ जाए, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, कोई भी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का उल्लंघन करके अन्य रूप हो जाए ये बात नहीं बन सकती। द्रव्य की जो जो पर्याय होती है उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म, क्या कहा, जो जो पर्याय होती है उस पर्याय रूप से परिणमने की, जिसको हमने क्या नाम दिया था उपादान में, अपने पर्याय रूप परिणमने की योग्यता वाला धर्म द्रव्य में ही है। हाँ, उसको क्या कहा था, तत्समय के पर्याय की योग्यता, ये तत्समय की पर्याय रूप परिणमने की योग्यता द्रव्य में विद्यमान है। तत्समय ने उस समय, उस समय ने विवक्षित समय निश्चित समय पर अपने निश्चित पर्याय रूप से परिणमने की योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में है। कब से? अनादि से। कौन सा धर्म है? उसी निश्चित समय पर उसी निश्चित पर्याय रूप से परिणमना। ये धर्म कोई नया बना नहीं है, ये योग्यता नई उत्पन्न नहीं होती, जो है अनादि से पड़ी हुई तभी होती है। जैसे जो मारीच वाला मारीच नाम का जीव आदिनाथ भगवान के समय में था, उस जीव के पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, आदिनाथ भगवान ने तो जानकर बताया था ना। तो उस जीव के सुनिश्चित समय में महावीर की पर्याय होने वाली थी, फिर उनका केवल ज्ञान, वो सुनिश्चित था कि नहीं हो? तो उस समय उस केवल ज्ञान रूप होने की योग्यता रूप धर्म उस जीव में कब से पड़ा था? अनादि से। हमारे भी, हम स्वयं जीव द्रव्य है, हमारे में भी निश्चित समय पर केवल ज्ञान रूप परिणमने का उस समय की पर्याय का जो योग्यता वाला धर्म हमारे द्रव्य में है। आज है कि तब जाके उत्पन्न होगा? आज है, ये स्वभाव में अपने पड़ा है। किस समय किस पर्याय रूप से होने वाले हैं हम, ये सब कुछ निश्चित है, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। अपने अपने पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, वही वो द्रव्य का ही अंग है। क्या कहते? देखो, द्रव्य की जो जो पर्याय होती है उस पर्याय रूप परमने की योग्यता रूप धर्म यानी स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान रहता है, इसे द्रव्य शक्ति भी कहते हैं। उपादान की भाषा में इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। ये तो इसकी हमने चर्चा की ही थी। अब समवाय के प्रकरण में हम उसी को याद कर रहे हैं। जैसे घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। इतना ही नहीं, अब देखो आगे क्या कहते हैं। मोह, जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है वो कौन कराता है? हाँ, पुद्गल कराता है कि नहीं? क्योंकि यहां कंफ्यूजन हमारे होते, क्यों? हमने अभी स्वामी जी को सुना, पुद्गल उसमें व्याप्य है, व्यापक है, पुद्गल का व्याप्य है, पुद्गल का कार्य है। अब यहां क्या कह रहे हैं? देखो, जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव जिसे अनियत स्वभाव कहा है, क्या है? क्या कहा बेटा? अनियत स्वभाव। अनियत स्वभाव ने क्या? विभाव रूप परिणमन करने का स्वभाव, योग्यता। जीव में और पुद्गल में स्वभाव रूप परिणमन भी होता है, विभाव रूप भी परिणमन होता है, तो अन्य द्रव्यों में क्यों नहीं होता? तो उसमें तो मात्र स्वभाव रूप परिणमने की ही योग्यता रूप धर्म पड़ा है, और जीव और पुद्गल में वो अपनी ही योग्यता से विभाव रूप परिणमन करेगा। निमित्त आया इसलिए नहीं, यहां तो पहले में पहले ज्ञान की अपेक्षा सिद्ध कर रहे, फिर जब हमें भेद विज्ञान करना है तो वो विभाव वाला है, हम उसको पुद्गल के खाते में डाल देंगे। भूल नहीं करना यहां पर, और यहां कोई विरोध नहीं है। पहले हम ये अनित स्वभाव की बात कर रहे हैं यहां पर, तो विभाव रूप जो परिणमन होता है, राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है, उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव जिसे अनियत स्वभाव कहा है जीव में है। अभी उसको दृष्टांत द्वारा समझेंगे। जैसे शीतलता पानी का नियत स्वभाव है, परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने की पर्यायगत योग्यता भी उसमें किसमें? पानी में। तो ये जो गर्म होता है, पानी गर्म होता है अग्नि के संयोग में, तो उसको क्या कहा? ये पानी का अनियत स्वभाव है। वैसे ही जीव का नियत स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आनंद आदि, ये उसका स्वभाव है, कायमी त्रिकाली स्वभाव है। फिर भी अब यहां पर हम कहेंगे कर्मोदय के उदय के निमित्त से, हम निमित्त की भाषा में बोलेंगे, तो वहां विभाव रूप जो परिणमन होता है, राग द्वेष रूप परिणमन चल रहा है, मोह राग द्वेष रूप परिणमन होता है, वो जीव स्वयं उसका जीव का परिणमन है, उसको अनियत स्वभाव कहा है। परंतु इस राग से भेद ज्ञान करने के लिए अभी जो बातें हम रोज सुनते हैं गुरुदेव के प्रवचन में, वहाँ क्या कहते हैं, ये जो राग है ना उसको भिन्न करना है और वो ज्ञान को अपने खाते में रखना, ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव पर्याय है उसको जीव के साथ अभेद कर देना और राग वाली पर्याय को भिन्न करके जुदी कर देना। कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बुद्धि में। वो राग को मिटा देना ऐसी बात नहीं, राग भी रहेगा, राग का ज्ञान भी रहेगा, परंतु हमारे अनुभूति कैसी होनी चाहिए, हम तो ज्ञानमय है और ये राग जो जानने में आ रहा है वो मेरे से जुदा है। भेद ज्ञान करने के प्रयोजन से तो हमें तो शास्त्र की भाषा अच्छी तरह से समझनी चाहिए, कहाँ व्यवहार कथन होता है, कहाँ निश्चय कथन होता है, कहाँ ज्ञान प्रधान कथन चल रहा है और कहाँ दृष्टि प्रधान कथन चल रहा है। कभी कभी एक ही ग्रंथ में दो बातें आएगी, कभी कभी भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न अपेक्षा आएगी, तो वहाँ कोई विरोध नहीं है। यदि अपने समझ में नहीं आता है तो हम अन्य गुरुजनों से पूछ लेना उसको। यहाँ क्या कहते, देखो यहाँ जीव के मोह राग द्वेष को क्या कहा, कौन सा स्वभाव कहा, अनियत स्वभाव कहा। वैसा नय भी है कि नहीं, आपने नय का नाम सुना है, नियत नय अनियत नय, तो वहाँ हाँ इसी की चर्चा है वहां पर भी। परंतु यानी जीव में तो ऐसा विभाव स्वभाव पड़ा है, कैसा, मोह राग द्वेष रूप परिणम ने का, परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणम ने का जीव का स्वभाव नहीं है। राग रूप परिणमन करता है कहो तो कहो, राग का करता कहो तो कहो, ऐसा आता है ना अज्ञानी के लिए। यहाँ तो हम परिणमन की अपेक्षा बता रहे हैं कि जीव राग रूप परिणमन हो सकता है उसका, वो विभाव परिणमन है, परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन तीन काल में नहीं कर सकता, जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म रूप परिणमने का उसका स्वभाव नहीं है, कर्म यानी ये जड़ कर्म की बात है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर इंद्रिय और भेजे में नहीं है, भेजे में नहीं, ब्रेन में नहीं है। शरीर में होगा ना ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव, इंद्रियों में तो होगा क्योंकि हम मान ही रहे इंद्रियों से ही ज्ञान हो रहा है, तो उसमें तो ऐसा कोई ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव ही नहीं है। हमने पहले देखा है प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है, स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, स्वतः सिद्ध करते वो स्वयं से ही है 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 है। अनादिकाल पहले तो बना होगा कि नहीं, नहीं बना है कहेंगे तो वो कार्य होगा, वो अनादि से है विद्यमान है, जिसके कोई आदि ही नहीं है तो उसको हम कहेंगे अनादि अनंत होता है, अनादि से ही विद्यमान है और अनंत काल विद्यमान रहेगा रहेगा और रहेगा। तो स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, जो नया उत्पन्न होता है उसको हम कार्य कहेंगे। और यह बात किसकी चल रही है, स्वभाव की। तो स्वभाव कभी भी किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, न उसमें कोई बदल ही कर सकता है, उसमें कोई बदलाव चेंज कुछ हेरा फेरी कुछ नहीं हो सकता, उसी को हम स्वभाव कहते हैं। यह स्वभाव अनादि अनंत एक सदृश एक रूप रहता है, स्वभाव को अन्य किसी के सहाय या मदद की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वभाव स्वभाव रूप रहे कायम टिका रहे, इसलिए कोई मदद रूप होगा कि नहीं वहां पर, उसको स्वभाव नहीं कहेंगे। तो अपने से ही कायम टिका हुआ है, एक सदृश एक रूप रहता है, अर्थात स्वभाव को अन्य किसी के सहाय या मदद की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह स्वसहाय या असहाय होता है। असहाय नहीं गरीब दीन दुबला बिचारा, ये नहीं, असहाय जिसको किसी अन्य सहाय की आवश्यकता ही नहीं है, न कोई किसी को सहाय कर सकता है। स्वभाव कभी खंडित नहीं होता, सदा कायम रहना, दृढ़ रूप से टिका रहना जैसे द्रव्य का स्वभाव है, उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना, प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप से रहना, परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। क्या कहा, ये नित्य रहना द्रव्य का स्वभाव है ना, क्या पलटना द्रव्य का स्वभाव है, बोलो दोनों है, आप क्या कहते हैं? हाँ बोलो पीछे पर्याय रूप से, फिर से दोबारा, हाँ बोलो आप ही बोलो। हाँ पर्याय की अपेक्षा से, तो नित्य कायम रहना जैसा द्रव्य का स्वभाव है वैसे नित्य पलटना, नित्य पलटने ने प्रति समय निरंतर निरअंतर अंतर छूटे बिना हर समय पलटना 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 कायम रहकर पलटना। क्यों ऐसे द्रव्य में कौन सी शक्ति है कि कायम पलट रहा है बोलो? हाँ कौन सा गुण है? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण जो शक्ति है द्रव्य में वो प्रति समय अपना निरंतर परिणमन चले, तो ये नित्य जो स्वभाव है वो तो कायम है, और अनित्य स्वभाव प्रति समय पलटता है कि नहीं पलटता? क्या कहते हैं आप? पलटता है। मैंने पूछा क्या, जैसे नित्य स्वभाव कायम रहता है अनित्य स्वभाव प्रति समय पलटता है ना, हमने स्वभाव की बात पूछी थी। जैसे नित्य स्वभाव नित्य है अनित्य स्वभाव वो भी नित्य कायम है, वो तो स्वभाव में उसको कहते हैं। इन्हें क्रम से नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव कहते हैं। प्रत्येक समय में यानी नित्य स्वभाव है द्रव्य का और अनित्य स्वभाव किसका है? पर्याय का। अनित्य स्वभाव किसका है बोलो? द्रव्य का ही है। नित्य स्वभाव द्रव्य का है, अनित्य स्वभाव भी द्रव्य का है, क्योंकि द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। प्रत्येक समय में तत्समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमने का कार्य रूप होने का स्वभाव क्षणिक उपादान उस द्रव्य में ही योग्यता रूप से विद्यमान रहता है। पर्याय रूप होता है वर्तमान में, और योग्यता रूप धर्म कब से कब तक है? अनादि से अनंत काल तक। ये जो क्षणिक उपादान है वो द्रव्य में विद्यमान है, निश्चित समय पर निश्चित पर्याय रूप से परिणमने की योग्यता रूप धर्म हर द्रव्य में विद्यमान है। उसके सारे अनादि अनंत पर्यायों का जो प्रवाह है निश्चित, उसका योग्यता रूप धर्म भी वहां पर विद्यमान है, वो नया नहीं उत्पन्न होता, अनादि से ही है, है और है। तो अभी हमें कौन सी आकुलता रहेगी, प्रवचन कब छूटेगा? अपने निश्चित स्व समय पर। क्यों? तो ये क्षणिक उपादान द्रव्य में ही योग्यता रूप से विद्यमान रहता है, इसे पर्याय शक्ति भी कहते हैं। हमने देखा था द्रव्य को, द्रव्य की जो निज शक्ति है त्रिकाली उपादान है, और ये जो पर्याय शक्ति है इसको क्या कहा था हमने? क्षणिक उपादान। तत्समय की पर्याय रूप पर्याय की जो योग्यता है वो योग्यता रूप धर्म उसी द्रव्य में विद्यमान है, इसी को हमने स्वभाव कहा। यहाँ त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान इन दोनों को स्वभाव में वर्णन करके पांच समवाय में से एक समवाय जो स्वभाव रूप कारण है उसकी हमने चर्चा की है। बाकी चर्चा तो हम शाम को करेंगे इसमें से। बोलो।